ॐ शांति ॐ शांति शांति वन के इस सुंदर प्रांगण में आप सभी बाबा के अति प्यारे ब्रह्मावत्सों का अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज हम सभी के सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्मुख आदरणीय राजयोगिनी अनसुईया दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। दीदी जी का पूरा लौकिक परिवार ईश्वरीय ज्ञान में चलता है। पिछले 35 वर्षों से दीदी जी समर्पित रूप से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय महिपालपुर और संबंधित सेवा केंद्रों के दीदी सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। दीदी जी ने साकार ब्रह्मा बाबा की पालना भी ली हुई है। और दिल्ली में दिल्ली जोन के यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर भी दीदी जी हैं। तो ऐसे दिव्य धारणा युक्त दीदी जी का हम करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और अभी बहुत ही ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक उनके दिव्य बोल हम सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। परम प्रिय प्यारे शिव बाबा के इस सुंदर बगिया के सभी पुष्पित सुगंधित बाबा की इस फुलवाड़ी को देखकर बहुत बहुत हमें हर्ष हो रहा है। और साथ ही साथ आज जो इतना सुंदर सौभाग्य बाबा ने हम सभी बच्चों को दिया है, पहले बाबा ने हम सभी को सेलेक्ट किया और आज वो विशेष घड़ियां हैं, पल हैं, जब हम बाबा से सन्मुख साकार में मिलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बहुत बेकरारी से, दिल से, हृदय से बाबा का आवाहन कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, जो समझते हैं कि बहुत दिल से हृदय से हम बाबा का आवाहन कर रहे हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो और ये भी कितना सुंदर हमारे लिए प्रिविलेज है, कितना हमारे लिए सुंदर सौभाग्य है, कितना हमारा ये बहुत लक है कि हम बाबा को ऐसे सामने मिलेंगे जिसके लिए भक्ति में लोग कितनी बड़ी बड़ी कठिन यातनाएं करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, बेचारे कहाँ कहाँ तक जाते हैं, लेकिन कोई मिल पाता है? नहीं मिल पाता है ना। तो और हमको बाबा ने इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि कल हम बाबा से, सन्मुख बाबा से न केवल मिलेंगे लेकिन साथ साथ में बाबा जो हमको कहेंगे वो हम करके भी दिखाएंगे। ऐसा है ना? तो जो जो करके दिखाएंगे वो अपने लिए ताली बजा सकते हैं और मैं भी आपके लिए ताली बजाती हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा वायदा कर लिया है। देखो बाबा जब भी आते हैं, तो साकार में जब बाबा थे और अब जब बाबा अव्यक्त रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, और 1936 से लेकर और आज तक चाहे रूप साकार रहा या अव्यक्त है अभी, लेकिन बाबा की जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे लिए केवल इतनी सी है। कितनी सी है? कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों। जैसे आप देखते हैं साकार में हर माता पिता को यही लगता है कि मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, मेरे से या मेरे से और भी ज्यादा अच्छे, है ना। जब से बच्चा पैदा होता है तब तब से ही लेकर क्या कहने शुरू कर देते हैं, ये तो मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा राज दुलारा या दुलारी, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा भी हम बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप सभी जो मेरे हो, हैं तो हम आदि काल से अनादि काल से बाबा के ही, क्या समझते हैं, ऐसे ही है ना भाई। ऐसे नहीं कि अभी हम बाबा के, जब से हमको पहचान मिली है तब से हम बाबा के हैं, ऐसे है क्या, नहीं। अब हमको क्या पहचान मिली, क्या याद आया कि कल्प कल्प से हम बाबा के ही हैं और बाबा के ही सदा रहेंगे, है ना। तो इतना पुराना रिश्ता, इतना अविनाशी रिश्ता हमारा बाबा के साथ है। अब जब हैं ही हम बाबा के, तो भाई होने भी कैसे चाहिए, फिर बाबा जैसे होने चाहिए ना भाई, कि डिफरेंट भी चल जाएंगे। देखो शेर का जो बेटा होता है वो कौन होता है, शेर होता है। कभी सुना शेर का बेटा एक पैदा हुआ गीदड़ था, सुना है भाई, नहीं, हंस रहे हैं सभी, नहीं होता ऐसे। तो बाबा जो है वो कितना ऊंचा, कितना सर्वशक्तिमान, कितने गुणों के सागर है हमारे बाबा। अगर अभी हम किसी को भी यहाँ बहनों से या भाइयों में से किसी से पूछे तो सब बहुत लंबी लंबी बाबा की महिमा सुनाएंगे, सुनाएंगे ना भाई। लेकिन साथ साथ अगर हम कहें भाई अपनी महिमा भी सुनाओ, जो है महिमा अविनाशी रूप से वो अलग बात है, प्रेजेंटली राइट नाउ अगर हम आपसे पूछे कि जैसे बाबा की महिमा है ऐसे आप अपने को भी उसी रूप में, उसी महिमा का पात्र योग्य समझते हो, उसके लिए कौन कौन हाथ खड़ा करता है। जितना बाबा, देखो बाबा क्या है, शांति का सागर। आप हैं शांति का सागर, जो है हाथ खड़ा कर। अच्छा, ये तो बहुत सारे हैं शांति के सागर, वेरी गुड। प्रेम का सागर, अच्छा प्रेम के सागर ज्यादा है, वेरी गुड। अच्छा शक्तिशाली, बाबा को क्या बोलते हैं, ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान। तो बाबा के बच्चे ऐसे मास्टर ऑल माइटी सर्वशक्तिवान हैं, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी। अब आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। है भी सही, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कोई संसार में लोग होते हैं ना, हम पूछते हैं भाई ये कौन व्यक्ति है, कहते हैं दीदी ये हमारे कॉलोनी का बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन हम उसकी जो वेशभूषा देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इतना अमीर तो नहीं लग रहा। या उसकी जो बातचीत है, व्यवहार है, या उसकी जो समर्पण भावना है, कहते इसने तो इतना किया ही नहीं। कहते नहीं, वैसे है ये बहुत पैसे वाला, लेकिन जब सेवा की बात आती है, लगाने की बात आती है तो नहीं लगाता है, है ना। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं तो कैसे, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। पर कभी कभी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, है ना। तो आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और कुछ थोड़ी देर के बाद हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान दादियां मिलने के लिए आएंगी आपसे। देखो स्पेशल मिलने आएंगी, कल बाबा हमसे मिलने के लिए आएंगे, आज दादी हमसे मिलने के लिए आने वाली हैं। तो इसलिए ऐसे सुंदर परिवार के और बाबा के बच्चे हैं, तो आज हम फ्राक दिल बन करके जैसा मेरा बाबा है वैसा हम अपने आप को बनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। तो जैसे दादी आए तो दादी हम सब की ऐसी रूहानी सूरत और ऐसे सुंदर व्यक्तित्व को देखकर दादी भी खुश हो जाए, और कल बाबा आए तो और भी अधिक खुश हो जाए कि मेरे सब बच्चे तो मेरे समान बन गए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हम एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, जो मुझे अपने जीवन में अनुभव होता है कि हम हैं तो बहुत बढ़िया, अगर हम अपना इस जन्म का भी पिछला रूप देखते हैं, जब से हमको बाबा मिले उससे पहले का भी रूप देखते हैं, तो वाकई हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। लेकिन एक छोटी मोटी बात होती है जो हमारी विशेषताओं पर कभी कभी पर्दा डाल देती है। तो उन अगर दो तीन बातों का हम ध्यान रखें, तो बाबा की जो उम्मीद है, जो बाबा हमको जिस रूप में देखना चाहते हैं, और अगर सच पूछिए तो हम खुद को भी उसी अच्छे शक्तिशाली रूप में स्वयं को हम देखना भी चाहते हैं। और अगर आप जहां जहां रहते हैं अपने परिवार के अंदर या जहां पर आप वर्क प्लेस पर हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पर भी जो आसपास का एनवायरमेंट है वो भी आपको उसी शक्तिशाली रूप में ही देखना चाहता है ना। तो केवल दो तीन बातों का अगर आज हम ध्यान रखेंगे तो वो जो रूप है वो हमारा प्रत्यक्ष नजर आने लगेगा। पहली बात जो मुझे नजर आती है, दिखाई देती है, कि एक बोल एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका इजहार करती है। बोल जो है व्यक्ति का वो क्या दर्शाता है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हम लोग कहानियां सुनाया करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अंधा था, उसको नजर नहीं आता था, तो वहां से घोड़ा गया था। तो एक पहले एक व्यक्ति ने आके पूछा कि भाई आपने यहाँ से किसी घोड़े को जाते देखा? कहते मुझे नजर तो नहीं आता, लेकिन वो जो गया था सिपाही भाई वो इस तरफ गया था, मैंने उस आवाज से पहचाना। तो उसने कहा आपको कैसे पता लगा कि मैं सिपाही हूँ? तो उसने कहा कि जिस तरह से आपने मेरे से बातचीत किया तो मैं समझ गया। दूसरा मंत्री आया था, उसने भी वही बात पूछी कि घोड़ा आपने जाते हुए देखा? उसके बाद राजा स्वयं आया, उसने आके पूछा कि महाराज आपने यहाँ से किसी को जाते देखा, एक घोड़ा जा रहा था? तो उसने कहा हाँ महाराज, राजा साहब मैंने इस तरफ से ही उसकी आवाज सुनी थी, वो इस तरफ ही गया होगा। तो बोल तीनों के थे, लेकिन सिपाही का जो बात करने का तरीका था वो एक तरह का था, मंत्री का जो बात करने का तरीका था वो दूसरे तरीका था। तो उस जिस व्यक्ति को नजर नहीं आ रहा था उसने कैसे कैलकुलेट किया? उनकी बातचीत से। तो हम सब जो सर्वशक्तिवान हैं, शिव बाबा के बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो पहले पहले कहां से इजहार होता है? हमारी बोल से, हमारी चाल से। तो जब भी हम बात करें, छोटी सी बात, कोई भी बात आपको नॉर्मल बात कहनी है, कोई किसी को अभी डांटना भी नहीं है, किसी की शिकायत भी नहीं करनी है, बस एक नॉर्मल आपको जो बात करनी है। कभी हम बोलते हैं कि भाई आज आप लोगों का थोड़ा आवाज नजर आ रहा था, हुआ क्या था, कोई बात हो गई थी क्या? कहते बात तो कुछ भी नहीं थी, परंतु पता है क्या, बस मैंने तो इतना ही कहा था एक ग्लास पानी दे दो, उस पे इतना झगड़ा हो गया। तो अच्छा, इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया, बस पानी की बात पर, एक ग्लास पानी की बात पे? कहते हाँ बात तो इतनी सी थी, था और कुछ भी नहीं, अरे पानी का ग्लास ही तो मांगा था। तो फिर हम बैठ के जब उनसे और बातचीत करते हैं तो पता लगता है कि वाकई बात तो यही थी, क्या थी, एक ग्लास पानी चाहिए था, परंतु झगड़ा क्यों हो गया, क्यों हुआ होगा झगड़ा? जिस तरह से पानी की डिमांड करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया, है ना। तो कौन सी बात हमारी जो मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर प्यार का सागर या मास्टर शांति का सागर, ये सब जो बाबा के दिए हुए हमको गुण है और जिसका हम लोग सब स्वरूप है, इसको जो इजहार करना है, उसको जो व्यक्त करना है, उसका जो पहला साधन है वो कौन सा है? बोल। तो इसलिए अगर बाबा की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है और हम सभी को जो बाबा ने कहा है कि मेरे सब बच्चे कौन हैं? राजा बेटे। हम सब कौन बनने वाले हैं? महाराजा महारानियां। ऐसे ही है ना कि कोई प्रजा बनने वाले भी है इस क्लास के अंदर? नहीं ना, वो तो बात की, जो बावन का टूलेट वाले प्रजा बनेंगे, ऐसे ही है ना भाई, माताएं महाराजा महारानी, महारानी बनने वाले हो ना, हाथ तो खड़ा करो, कौन कौन सी भाई? देखो सारी महारानी है। और विश्व महाराजन बनने वाले भाई, देखो सारे महाराजा बनने वाले, वेरी गुड, फिर से ताली बजाओ। और याद रखना इस बात को कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने बाबा से ये वायदा किया है कि हम कौन बनेंगे? महाराजा महारानी बनेंगे। इससे जब भी आप बातचीत कीजिए ऐसे कीजिए, कैसे कीजिए, याद करके कि मैं कौन हूँ, महाराजा बनने वाला हूँ, मैं महारानी बनने वाली हूँ। तो जो आपको बातचीत करनी है इस स्वमान में स्थित होकर के, इस बात को याद करके है कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ, बस बना की बना। साकार बाबा की हम सबसे बड़ी विशेषता जो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, आप सभी ने भी सुनी होगी, याद है आप सभी को, बाबा जब भी श्री कृष्ण जी का फोटो देखते थे तो उनको इतनी खुशी होती थी और ऐसे बाबा के अंदर से दिल से निकलता था, अंदर से ऐसे देखते ही जैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बचपन का फोटो हो, है ना, और उतना अभी और हम थोड़े परिवर्तन हो गए हैं, हमारी शक्ल उतनी पहचान में नहीं आ रही, तो हम बताते हैं पता है किसका फोटो है, है ना, बड़े प्यार से बताते, अच्छा दीदी आपका फोटो, हम कहते हैं और क्या, ये मेरा ही फोटो है, कहते अच्छा आप छोटे होते इतने अच्छे होते थे, कहते हाँ तब तो हम इतने अच्छे होते थे। तो साकार बाबा भी जब श्री कृष्ण जी के फोटो को देखते थे, एकदम बाबा के मन से निकलता था, बच्चे पता है आज मैं ये हूँ और कल मैं ये बनने वाला हूँ। तो हम सबको भी पक्का याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, आज हम ये ब्राह्मण रूप में हैं और कल हम ऐसे महाराजा महारानी बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी कभी कि अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का फोटो जो है वो अपने पास रखना चाहिए ताकि याद रहे, है ना। तो जब आप बात करेंगे किसी से भी, हम तो ये कहते हैं कि हम सभी जिम्मेदार आत्माएं हैं और इसलिए यहाँ पर सभी बड़े उम्र के भी नजर आ रहे हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर एक, चाहे छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है, हर एक किसी न किसी से बड़ा होता है और किसी न किसी से छोटा होता है। और जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, ये भी हमने देखा है कि एक दूसरे को जो कुछ भी हो रहा है उन गलतियों का बताना भी हम जरूरी समझते हैं और बताना भी चाहिए, है ना भाई। मान लीजिए आप बड़े हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को या बच्चों को अगर उनकी गलतियां नहीं बताएंगे तो भाई फिर तो हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, ठीक नहीं माने जाएंगे, भाई बतानी तो पड़ेगी ना, कि नहीं बताए, क्या करना चाहिए, बताना चाहिए ना। हाँ, तो गलतियां जरूर बतानी चाहिए और जो भी बातचीत करनी है जितनी आवश्यक है वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, महाराजा महारानी जो बनने वाले हैं उनको अपनी बात को शुभ भावना से और प्रेम से बात को कहना भी है और गलतियों को बताना भी है। कभी कभी कुछ हो जाता है ना तो कहते हैं इसीलिए तो मैंने सोचा बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि बात करने से क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चुप क्यों नजर आ रहे हो, कहते हैं क्या फायदा, फिर कुछ बोल देंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चुप्पी चुप्पी कर ली है। भाई चुप्पी करना भी तो गुस्सा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। बातचीत करना कई बार ठीक होता है और चुप रहना गुस्सा होता है ना। तो इसलिए आज पहली बात, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमें अपनी बात, जो बात कहनी है वो बात भी कहे, किसी की कोई कमी है वो जरूर बताए, लेकिन कैसे बताए, शुभ भावना और शुभकामना से। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल, सदा हमारे साथ जो भी आसपास हमारी बहने भाई है ना, वो हमें कहते हैं आप ये वाली बात जरूर पक्का कराते हो, तो हम कहते हैं कि नहीं ये बात बहुत जरूरी है ना, इसे जब भी हम किसी से कहीं पर भी, चाहे नॉन बी केस के साथ हमारी बातचीत होती है या अपने ब्राह्मण परिवार में बातचीत होती है, तो उसमें हम ये वाली बात जरूर सुनाते हैं जो अब मैं सुनाने जा रही हूँ, आप याद भी रखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। वो बात इस तरह से है, बात करने की है कि एक बार कौवा बहुत तेज गति से गुस्से से जा रहा था, तो कोयल ने उससे पूछा भैया क्या हो गया, आप बहुत तेज गति से गुस्से से जा रहे हो। तो कौवे ने कहा कि बहन मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा अब। तो कोयल ने पूछा क्या हो गया, क्या वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है क्या। तो बोला अपॉइंटमेंट क्या होगा, भारत के लोग जब मुझे पसंद ही नहीं करते हैं तो मैं रहूं भी क्यों यहाँ पर, साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी वहीं पूछ होगी, मैं इसीलिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा आखिर पता तो लगे बात क्या हुई, तो उसने कहा कि देखो बहन, मैं जिस भी अटरिया पर बैठता हूँ ना, वहां के लोग मुझे एकदम भगा देते हैं, मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं काला देखने में लगता हूँ ना इसलिए। तो कोयल ने कहा, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, जितने काले आप हो उतनी काली मैं भी हूँ, लेकिन जिस अटरिया पर मैं बैठती हूँ वहां तो जाते जाते लोग रुक जाते हैं, और जब तक मैं बोलती रहती हूँ तब तक बहुत मुग्ध होकर मेरी बात को सुनते रहते हैं। बात कालेपन की नहीं है, बात 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 करने की है, समझा। तो हम सभी जो महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो कौन सी बात को याद रखेंगे, हमें बाप समान बनना है। देखो बाबा भी हमारी गलतियों को बताते हैं, देखो पहले आप देखेंगे हर वाणी के अंदर खूब हमारी महिमा होती है, कौन से बच्चों से मिलने आए हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं बाबा हमारी, है ना। उसके बाद क्या कमी नहीं बताते, हर बार बताते हैं, है ना। तो इसलिए बाप समान बनने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब भी बात करनी है तो कैसे करनी है, जैसे बाबा करते हैं, कितने प्रेम से करते हैं, स्नेह से करते हैं, दुलार देते हैं, प्यार करते हैं, अपनापन। बाबा हैं तो हम बाबा के ही, लेकिन बाबा वो अपनापन इजहार करते हैं, है ना। तो हम सभी भी बाबा के बच्चे जहां जहां पर भी हैं, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपनी नौकरी में, ये बाबा ने हमें ना केवल हम बीकेस, लेकिन जितने भी नॉन बीकेस भी हैं, वो कौन है, वो भी हमारा परिवार है कि नहीं है, है कि नहीं है, या समझते हो यहाँ जो हम मधुबन में आ गए हैं, जिस सेंटर पे हम क्लास करते हैं, वो हम सब बाबा के परिवार के हैं, और जहाँ पर जो अभी बाबा के नहीं बने हैं, अभी जिनको बाबा का परिचय नहीं मिल पाया है, या जो बाबा के साथ नहीं जुड़े हैं, आप क्या समझते हैं, वो भी हमारा परिवार है कि नहीं है, है ना। हाँ। तो चाहे वो बीकेस है चाहे वो नॉन बीकेस है, सारे बाबा के बच्चे हैं, हम बेहद ईश्वरीय परिवार के हैं। इस स्मृति में रहकर, इस कॉन्शियस लेवल में रहकर जब हमें बातचीत करनी है तो उस कोयल के साथ समान करनी है, तब जो हमारी बात होगी ना वो ऐसे ही प्रतीत होगी जैसे हम सभी कौन है, कोयल है। हमारी बात के अंदर वो शुभ भावना और शुभ प्रेम झलकेगा, नजर आएगा। इसलिए बात किसी को भी कहने में सबको अच्छी लगेगी, बात भी अच्छी लगेगी, और अगर आप सच पूछिए तो कमी भी अगर आप बताएंगे, लेकिन इस तरीके से बताएंगे जैसे बाबा हमको बताया करते हैं, पहले प्रशंसा उसके बाद गलती, तो हमारा जो स्थिति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, बाप समान स्थिति हो जाएगी। जो बाबा की उम्मीद है कि मेरे बच्चे कैसे नजर आए, आजकल हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई आजकल तो बच्चे है ना जो छोटे, आजकल के नौजवान, उनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल है, आजकल वो जमाना ही खत्म हो गया है, किसी को कुछ बात कहना माना अपने संबंधों को नष्ट करना, ऐसा नहीं है, बात वही है कौवे वाली बात हो जाती है। अगर उस बात को कोयल की तरह और अच्छी तरह से शुभ भावना शुभकामना को अंदर संजो कर और अगर बातचीत करना प्रारंभ करेंगे, और बाबा ने जो हमको हमारी पालना जिस रूप से किया है उस तरीके से करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जरूर बाबा की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। तो इस बात का आप सभी आज से लेकर, वैसे तो सभी बाबा के बच्चे हैं, जरूर ध्यान भी रखते ही हैं, रोज बाबा की वाणी भी सुनते ही होंगे, लेकिन साथ साथ में आज की इस बात को इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बाप अभी दादी हमसे मिलेंगी, बाबा भी मिलेंगे, तो इस बात को भी साथ साथ हम अपने साथ पक्का कर लेंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि बाबा हम सब बच्चों को जो अपने समान बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी बाबा की वाणी प्रतिदिन हम सुनते हैं, साकार वाणी या अव्यक्त वाणी, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको साकार वाणी बहुत प्रिय है? हाथ खड़ा कीजिए जिनको साकार वाणी बहुत अच्छी लगती। अच्छा, जिनको अव्यक्त वाणी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आप सच पूछिए तो वाणी चाहे साकार हो या अव्यक्त, बाबा का मैसेज एक ही है, एक जैसा ही मैसेज होता है। और वो मैसेज क्या होता है कि हम सब बच्चों को आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर भविष्य में जाकर हमको देवता बनना है। इसलिए वाणी चाहे साकार है या अव्यक्त, उसमें बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, जो बाबा हमको रोज समझ देते हैं, लर्निंग दे रहे हैं, उसको हमें अपने मन में स्वीकार करना है। जिसको हम लोग सुनते आए ना कि भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया तो एक अर्जुन को दिया, तो वाणी हम साकार सुने या अव्यक्त सुने, जैसा जिस संडे को अव्यक्त होती है ज्यादातर और बाकी दिन साकार होती है, नहीं, उस वक्त हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे मन की जो भावना है, वो ये होनी चाहिए कि बाबा ने जो वाणी सुना रहे हैं वो केवल एक मुझे सुना रहे हैं, और जब मुझे सुना रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट या उसको जीवन में धारण भी किसको करना है? मुझे करना है। जब ये मन की भावना हमारे सामने पक्की रहेगी कि मुझे ही करना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि बाबा ने जो मुझे कहा है वो करने की जो मन की संकल्प है उसके अंदर बहुत तीव्रता आ जाएगी। और जब हम करना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका असर आसपास के लोगों पर बहुत जल्दी होगा। और बाबा जो चाहते हैं कि बाबा का पैगाम हर एक तक पहुंचे, और वो कब होगा कि जब हम मन के अंदर ये स्वीकार कर चुके हैं कि बाबा जो कह रहे हैं वो मुझे ही करके दिखाना है, मुझे ही करना है। एक बार एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे, और उन्होंने, जैसे बाबा हम पर रोज मेहनत कर रहे हैं, तो उस गुरु ने भी अपने दोनों शिष्यों पर बहुत मेहनत किया, और फिर उनको लगा कि अब ये बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं। तो उनकी देखने के लिए कि दोनों बच्चे कितना तैयार हुए हैं, तो गुरुजी ने दोनों बच्चों को गुलदस्ता दिया जिसमें बहुत सारे फूल थे, और दोनों बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चों आप जाओ इन फूलों को लेकर के, जितने इतने फ्लावर्स हैं ना इसमें, इसमें से एक एक फूल निकालकर आपको देना है। जो रास्ते में आते हैं ना, आपको अभी से आप चलना शुरू करोगे तो रास्ते में जो भी आए आप उसको फूल देना, लेकिन कंडीशन लगा दी कि फूल उसको देना जो मुस्कुरा रहा हो। किसको देना? जो मुस्कुरा रहा हो। बाकी ऐसे नहीं किसी को भी आप दे दो, ऐसे नहीं करना, तो इस आज्ञा का जरूर पालन करना। तो बच्चों ने कहा ठीक है, तो दोनों बच्चे स्टार्ट हुए चलना, और जो जो रास्ते में आ रहे थे तो वो जो मुस्कुरा रहे थे उनको फ्लावर्स देते जा रहे थे। एक बच्चा 2 घंटे के बाद वापस आ गया और उसके सारे फ्लावर्स फिनिश हो गए थे, सब वो बांट चुका था, और दूसरा बच्चा जो है 2 दिन के बाद वो भी आ नहीं रहा था वापस, तो जिसके फ्लावर्स फिनिश हो गए थे उसको कहा कि उसको ढूंढ के लाओ, वो बच्चा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चा जब वापस आया तो उसके हाथ में वो जो गुलदस्ता था वो एज इट इज था, उसके अंदर एक भी जो फूल था वो नहीं दे पाया था। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, आपने फ्लावर्स दिए नहीं? कहते नहीं, मैं देना तो चाहता था, बहुत लोग मुझे मिले लेकिन आपने जो कंडीशन लगा दी थी, कौन सी कंडीशन? किसको देना है? जो मुस्कुरा रहा हो। तो गुरुजी, आज के इस कलयुग के जमाने में मुस्कुराने वाले लोग तो होते ही नहीं है। कैसे होते हैं? दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अब आपने जो कंडीशन लगा दी कि जो मुस्कुरा रहा हो उसको ही देना है, तो मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है। तो कहा अच्छा, तो इस बच्चे से पूछा, भैया तुमने कहीं इंस्ट्रक्शन को वायलेट तो नहीं किया? तुमने ऐसे ही तो नहीं दे दिए फूल? कहता नहीं गुरुजी, मैंने उन्हीं लोगों को दिया था जो मुस्कुरा रहे थे। कहा अच्छा, इसको तो सब मुस्कुराने वाले लोग मिले और इसको मिले ही नहीं। तो जिसने फूल बांट लिए थे तो उससे पूछा, आप कौन सी साइड गए थे? तो उसने बताया कि मैं इस गली में गया था। तो जिस बच्चे के नहीं फूल बट पाए थे उससे पूछा, आप इस साइड गए थे? कहता बिल्कुल गया था वहाँ एक। कहता उसने दो चार के नाम गिनवाए गली के लोगों के। कहता वो मिला था? कहता हाँ मिला तो था, पर वो हंस नहीं रहा था। कहता जब मैं गया था तब तो वो हंस रहा था। तो उसने कहा अच्छा, ये कैसे हुआ? तो जिस बच्चे के फूल बट गए थे तो उसने अपनी बात सुनाई। कहते गुरुजी, मैंने पता है क्या किया? तो गुरुजी ने पूछा क्या किया बच्चे? कहा कि आपने जो कंडीशन लगाई कि सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि जब मैं निकलता था और दूर से ही मैं किसी को आते देखता था तो मैं मुस्कुराने लगता था। तो जब मैं मुस्कुराऊंगा तो सामने वाला क्या करेगा? मुस्कुराना पड़ेगा ना। तो फूल क्यों बटे? इसे पूछा। कहता अच्छा, मैंने ये तो किया ही नहीं। क्या नहीं किया? मैं इंतजार करता रहा कि गुरुजी ने कहा है। देखो, इसने भी आज्ञा का पालन किया, पर इसने क्या किया? इंतजार करता रहा कि गुरुजी ने कहा है कि सामने वाला मुस्कुराता हुआ नजर आए तो फ्लावर देना है ना। तो हमको भी क्या करना है? बाबा ने हमको कहा है कि सबको पैगाम पहुंचना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक मुस्कुराने की बात नहीं है इसमें, जो कुछ भी करना है, बाबा ने जो मुझको आज्ञा दिया है वो किसको करना है? वो मुझको करना है। जिंदगी के हर कदम पर इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला क्या करे, मेरे को मदद करे, मेरे को सहयोग दे, मेरे साथ अच्छा चले, मेरे साथ मिलकर चले, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझको करना पड़ेगा। बाबा की क्या उम्मीद है? कि सबको बाबा का पैगाम मिले तो मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार, मेरा बोल कैसा होना चाहिए, जिसमें नजर आए कि बाबा की श्रीमत को इन्होंने कितना अच्छा पालन किया हुआ है। सामने वाले के मन में ये उत्सुकता आ जाए कि आप कहाँ जाते हैं। आपको न बताना पड़े कि हम कहाँ जाते हैं, हम आपको वहां ले जाए जहां पर हम जाते हैं वह भगवान आते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर, हमारे बोल के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर वो बाबा की जो गुण हैं, वो बाबा की विशेषताएं हैं। केवल मुस्कुराने की बात नहीं है, बाबा की जो विशेषताएं हैं वो मेरे व्यक्तित्व से, मेरे व्यवहार से, मेरी चलन से, मेरे चेहरे से नजर आएंगी तो सामने वाले को इच्छा होगी। क्या इच्छा होगी? कि भैया आप कहाँ जाते हो, माताजी आप कहाँ जाते हो, आपके व्यवहार में वो शालीनता, वो दिव्यता, वो सहयोग की भावना, स्नेह ऐसा प्रत्यक्ष नजर आए कि सामने वाला जैसे वो मुस्कुरा रहा था तो इसने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो हमारे व्यवहार में वो शालीनता, वो दिव्यता, वो भगवान पने की, कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो व्यवहार के अंदर जब नजर आएगा तो हर व्यक्ति हर पर्सनैलिटी के अंदर ये संकल्प आएगा कि हम भी इनके साथ जाएं। ये कहां जाते हैं, इनके अंदर इतनी दिव्यता कैसे है, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन ये कितने शांत और शीतल नजर आ रहे थे, है ना। तो ये क्या करेगा, बाबा ने जो हमको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करने में हमारा बहुत बड़े नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो कितनी बातें हो गई भाई करने के लिए, कितनी बातें हुई अभी तक, दो बातें। पहली क्या थी कि हमें अपने बोल को बोलते वक्त याद करना होगा कि हम कौन बनने वाले हैं, महाराजा महारानी बनने वाले। दूसरा, बाबा ने हमको जो काम दिया है कि हर एक व्यक्ति अब बाबा के साथ जुड़ जाए, तो मैं ऐसा जुड़ा हुआ बाबा के साथ नजर आऊं कि दूसरे के मन में संकल्प आए कि हम भी बाबा के साथ ऐसे ही जुड़े, ठीक है। तीसरी बात, हम सब जो देखो जितने भी हैं यहाँ पर, दो चार थोड़ी सी बहनें नजर आ रही हैं, बाकी जो हैं यहाँ पर जितने भी बहन भाई हैं, सभी अपने परिवार में संसार में संभालते हुए, संसार की जो अनेक जिम्मेदारियां हैं उनको संभालते हुए बाबा की धारणाओं में आगे आगे बढ़ रहे हैं। और हमने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि तीन प्रकार की बातें, जिसे हम विघ्न भी कह सकते हैं, परीक्षा भी कह सकते हैं, समस्या भी कह सकते हैं, वो हर एक के सामने आती हैं। पहली प्रकार की समस्या है जिसे हम कहते हैं शरीर और शरीर से संबंधित, उसमें हमारी स्वयं की बीमारी, हमारे परिवार वालों में किसी की अकस्मात कोई बीमारी आ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, ये अनेक प्रकार की शरीर और संबंधियों से संबंधित कुछ कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ कुछ ऐसे एक्सीडेंट या ऐसी कोई समस्याएं होती हैं। दूसरी प्रकार की जो परीक्षा या समस्या हम कह सकते हैं, मान हानि। कभी कभी ऐसी बात होती है हम बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं और कोई हमें अननेसेसरी डांट देता है या चार लोगों के सामने हमें कुछ उलट पुलट कह देता है, जिसे हम कैसे कह सकते हैं इज्जत का सवाल। कभी तो गलती हो गई होती है इसलिए कहा होता है और कभी कभी हमारी गलती कुछ भी नहीं होती है, इस वजह से किसी भी वजह से वो हमें उनको गलत फहमी होती है, इस वजह से हमारे सामने वो परीक्षा आती है। समस्या कह दीजिए, विघ्न कह दीजिए, कोई भी शब्द हम दे सकते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे लॉस होते हैं, हानि होती है, जैसे पैसा या कोई हमारा सामान जो बहुत कॉस्टली था वो गुम जाता है, चाहे चोर चोरी करके ले गया या हमारी अपनी नेग्लिजेंस से, हमारी ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे होता है ना, मोबाइल कहीं छूट गया, कहीं टैची अचानक कोई उठाकर ले गया, या हमें लग रहा था किसी और ने उठा लिया था परंतु वो हमारे सहयोगी ने नहीं उठाया था, वो वहीं पर रह गया और बाद में पता लगता है कि वो नुकसान हो गया, है ना। ये तीन प्रकार की समस्याएं ऑफ एंड ऑन बीच बीच पे आती रहती हैं, आती हैं कि नहीं आती हैं, सबके जीवन में आती है या कोई इन समस्याओं से मुक्त है, आती हैं तो जरा हाथ तो खड़ा करो। अच्छा, सब सुन रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो हमारा सामने जब ये परीक्षा आती है तो उस समय पर हमें अपनी जो स्थिति है, अपनी स्थिति को ठीक रखना, ये हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है। अब ये तीन प्रकार की जब समस्याएं आएंगी तो हम अपनी स्थिति को उसी समय पर ही, अपनी स्थिति को ठीक रखने से ही हमारे नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं या घट जाते हैं। अब जैसा रखेंगे, अगर मान लीजिए तीनों में से कोई भी प्रकार की आई विघ्न, समस्या या परीक्षा आई, और इन तीनों में से कोई भी परीक्षा समस्या आई और अगर स्थिति को ठीक नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे। तो जो पहले हमने सोचा था कि हम कौन बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। आप देखिए हमारे यज्ञ में हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां इन तीनों ही परीक्षाओं से पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या हम समझते नहीं बाबा के तन में तो शिव बाबा आते थे ना, इसलिए उनको इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। बाबा आते थे, बाबा सब ठीक कर देते थे, ऐसे है किया कुछ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए? कुछ किया मम्मा के लिए? किया मम्मा के सामने भी ये तीनों बातें आई, कितनी बड़ी बीमारी आई कि नहीं आई? फिर उनके सामने भी ऐसे ही बहुत सारे जेल तक ले गए उनको, सबने सुन रखा है ना भाई बाबा की जीवन कहानी मम्मा की जीवन कहानी, जेल तक ले गए, कितनी मान हानि हुई है ना। इस प्रकार से और भी बहुत सारी यज्ञ को हम खोल के देखते हैं तो गरीबी का पाठ कितना आया। इतने बड़े बड़े हमारी दादियों में से एक भी दादी ऐसी नहीं है जो सामान्य परिवार से हो, हमारी सारी दादियां बहुत बहुत अमीर परिवारों की है। लेकिन उनके सामने चाहे बेकरी पार्ट आया, चाहे संसार वालों ने इस ब्रह्मा कुमारी के लिए ओम मंडली जब थी ओम मंडली के नाम से था क्या भी कीचड़ उछाला, कितने भी लोग जो आए थे उनमें से बहुत सारे छोड़कर भी चले गए, बाबा ने और दादियों ने इन सब समस्याओं में इन सब परीक्षाओं में अपनी स्थिति को अचल अडोल करके हमारे सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। और आज इतनी परीक्षाओं को पास करके आज ये यज्ञ अब जो हम सभी हैं हम सबके हाथ में दिया है, इतनी मेहनत से इतनी सारी बातों को पास करके और इतनी मेहनत का फल आज हमारे हाथ में आया है। अब आप बताएं कि ऐसे समय पर हमें क्या करना होगा। दादी जी आ चुके हैं तो जैसे दादियों ने सब हाथ हिला करके दादी जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और मैं अपनी बात को बस एक सेकंड में कहकर समाप्त करूंगी कि जैसे बाबा ने दादियों ने ये यज्ञ को इतनी मेहनत से और उन सुंदर धारणाओं से सजाकर आज विश्व स्तर पर पहुंचाकर हमारे सामने हमारे हाथों में दिया है, हमें इस बात को जरूर ऑनर भी करना चाहिए और याद करना चाहिए कितनी मेहनत का फल अब हमारे हाथ में आया है। तो उस ईमानदारी को उस वफादारी को अपने अंदर सजोकर ये सब कुछ जो बाबा ने हमको करने के लिए दिया है उसको हमें भी दादियों की तरह बाबा की तरह करके दिखाना है। ओम शांति।
Thank you. लगाई बिखरा है वैराग्य तारा।